ये आकाशवाणी है। अब आप निखिल कुमार से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। एनडीए सरकार के केंद्र में 11 वर्ष पूरे होने के संदर्भ में श्री मोदी ने कहा कि ये सरकार के लिए गौरव की बात है कि उसने इस कार्यकाल में देश के परिश्रमी किसानों की सेवा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने मृदा स्वास्थ्य और सिंचाई जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया, जो बहुत लाभकारी सिद्ध हुआ। प्रधानमंत्री कनाडा में कैनसस में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कल श्री मोदी को फोन कर इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री ने श्री कार्नी को हाल के चुनाव में जीत हासिल करने पर बधाई दी और शिखर सम्मेलन में आमंत्रित करने के लिए आभार व्यक्त किया। ओटावा में श्री कार्नी ने कहा कि कनाडा भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और आगे बढ़ाना चाहता है।
India, the fifth largest economy in the world, effectively the most populous country in the world, central to a number of those supply chains, at the heart of a number of those supply chains, so it makes sense. And in addition, bilaterally, we have now agreed, importantly, to continue to law enforcement dialogue. So there's been some progress on that, recognizes issues of accountability. I extended the invitation to Prime Minister Modi in that context, and he has accepted.
G7 शिखर सम्मेलन 15 से 17 जून तक आयोजित होगा। फ्रांस की एरोस्पेस कंपनी दसॉ एविएशन और भारत की टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड ने भारत में राफेल लड़ाकू विमान के ढांचे का संयुक्त रूप से निर्माण करने से संबंधित 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये देश की एरोस्पेस विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत करने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। दोनों कंपनियों की संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि भारत के एरोस्पेस बुनियादी ढांचे में ये महत्वपूर्ण निवेश है। साझेदारी के तहत टाटा एडवांस सिस्टम्स हैदराबाद में राफेल विमान के प्रमुख संरचनात्मक ढांचों के निर्माण के लिए अत्याधुनिक निर्माण केंद्र स्थापित करेगा। भारत में बेहद गरीबी की हालत में रहने वालों की संख्या कम करने की दिशा में उल्लेखनीय सफलता मिली है। 2011-12 से 2022-23 के बीच 2022-23 के बीच 26 करोड़ 90 लाख से अधिक लोगों को बेहद गरीबी के हालात से बाहर निकाला गया। विश्व बैंक के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार गरीबी की ये दर जहां 2011-12 में 27.1% थी, वहीं 2022-23 में घटकर 5.3% रह गई। देश में 2011-12 में 34 करोड़ 44 लाख से ज़्यादा लोग बेहद गरीबी की हालत में जी रहे थे। 2022-23 में इनकी संख्या तेज़ी से घटकर 7.52 करोड़ के करीब रह गई। एनडीए सरकार के 11 वर्ष के कार्यकाल में लागू की गई पीएम आवास योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, जनधन योजना और आयुष्मान भारत योजना की मदद से गरीबी की दर घटाने में ये बड़ी सफलता मिली है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में सुरक्षा बलों के समक्ष 1 करोड़ से अधिक के सामूहिक इनाम वाले 12 कट्टर नक्सलियों ने कल आत्मसमर्पण किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि पिछले 18 महीनों में राज्य में रिकॉर्ड 28 माओवादी मारे गए, 31 गिरफ्तार हुए और 44 ने आत्मसमर्पण किया है।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली जिले के कल महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ सीमा पर स्थित सुदूर कवंडे गांव के दौरे पर थे। करीब 12 नक्सली जिन पर 1 करोड़ से ज्यादा का इनाम था, उन्होंने हथियारों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। उन्हें मुख्यमंत्री फडणवीस ने संविधान की एक प्रति भेंट की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आत्मसमर्पण करने पर सरकारी नीति के अनुसार उनका पुनर्वास किया जाएगा। धनंजय वानखेड़े, आकाशवाणी समाचार, नागपुर।
देश में आज कुर्बानी का पर्व ईद उल अजहा धार्मिक आस्था और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। लोगों ने आज सुबह ईदगाह और मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की और एक दूसरे को बधाई दी। ये पर्व हजरत इब्राहिम द्वारा अल्लाह के आदेश पर अपने इकलौते पुत्र के कुर्बानी देने पर राजी होने की याद में मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। मौसम विभाग ने आज मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश का अनुमान लगाया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में अगले 7 दिन तक वर्षा जारी रहने की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा और कर्नाटक में दक्षिणी प्रायद्वीपीय हिस्सों और विदर्भ, छत्तीसगढ़ तथा ओडिशा में 10 जून तक तेज हवाओं और बिजली के साथ बारिश का अनुमान है। कल तक पूर्वी राजस्थान में भी बारिश का अनुमान है। अगले 2 दिनों में पश्चिमी राजस्थान में धूल भरी हवाएं चल सकती हैं। फ्रेंच ओपन महिला सिंगल्स फाइनल में आज शाम शीर्ष वरीयता प्राप्त आर्याना सवालेंका का सामना दूसरी वरीयता प्राप्त कोको गाफ से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त।